नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर।
दोस्तों, ले आए हम आज आपके लिए 1 से 15 फरवरी का अंक। दोस्तों, भारत का किसान यानी अन्नदाता आज सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो देश की विकास यात्रा का सक्रिय और भरोसेमंद साथी भी बन गया है। विकसित भारत में सहयात्री बने किसान परिवारों ने न सिर्फ देश बल्कि जरूरत पड़ने पर विश्व का भरण पोषण किया है। आज भारत विश्व में चावल, दलहन और दूध समेत कई कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पीछे वर्षों की निरंतर मेहनत, नीतियों को लेकर स्पष्ट दिशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का योगदान है, जिसने भारतीय कृषि की संभावनाओं को नए आयाम दिए। बीज से लेकर बाजार तक के सफर में भारत ने वैश्विक संकटों, महामारियों और आपदाओं जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपनी उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि दर्ज की और पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जिस तरह से समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसने किसान को व्यवस्था के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है।
आज किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से नियमित सहायता पहुंचाई जा रही है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी संबल मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा कवच बनी है। कृषि अवसंरचना निधि से कृषि इंफ्रा को मजबूती मिल रही है। डिजिटल माध्यमों और राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी पहल ने किसानों को पारदर्शी और व्यापक बाजार से जोड़ा है। केंद्र सरकार ने परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर किसानों की आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित किए हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब कृषि सशक्त और किसान समृद्ध हो। अन्नदाता की मेहनत, नीति की स्पष्टता और तकनीक के समन्वय से आज भारतीय कृषि एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। इस 1 फरवरी को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाले सबसे बड़े कदम पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी संदर्भ में कृषि व किसान कल्याण की 11 वर्ष की परिवर्तनकारी यात्रा ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है।
आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों, राजप्रासादों, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। कविवर रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां किसानों के जीवन के महत्व को सटीक बनाती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, इस धरती पर अगर किसी को सीना तान कर चलने का हक है तो वो धन धान्य पैदा करने वाले किसान को है। कृषिर धन्या कृषिर मेध्या जंतु नाम जीवनम कृषि, ये श्लोक कृषि के महत्व को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है और कृषि ही प्राणियों का जीवन है। ये हमें बताता है कि कृषि न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए भी आवश्यक है। जय जवान जय किसान का नारा हमें बताता है कि किसान राष्ट्र का मौन योद्धा होता है, यानी युद्ध भूमि में दिखाई देने वाला सैनिक जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण वो किसान है जो खेतों में पसीना बहाता है और रसद पहुंचाता है। युद्ध के समय किसान की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि उसी के द्वारा पहुंचाया गया भोजन सैनिकों का मनोबल, उनकी शक्ति और धैर्य को बनाए रखता है।
ये सुभाषित श्लोक कविता उदाहरण बताते हैं कि कृषि और किसान एक राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है, जो शांति और युद्ध दोनों का आधार है। देश केवल तलवार से नहीं हल से भी बचता है, जो खेत में अन्न उगाता है वही युद्ध जीतने की नींव रखता है। सैनिक और किसान दोनों राष्ट्र के रक्षक है, यही सोच नए भारत के कृषि व किसान कल्याण का आधार है। इसलिए केंद्र सरकार किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। आज बीज से बाजार तक केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेती और किसानी सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। भारत का किसान अब भारत की विकास यात्रा का सहभागी बन चुका है।
विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। इसके लिए जरूरी विषयों पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसानों को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसी फसलें पैदा हों, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की भी जरूरत पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटें, कैसे कम पानी में अधिक अनाज उत्पादन करें, कैसे भूमि को खतरनाक रसायनों से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचें, ऐसे अनेक विषयों पर बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने काम किया है ताकि भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनाया जा सके।
भारत में लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका या तो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है अथवा कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों से संबद्ध है। खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के तत्काल बाद कृषि क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना जरूरी था। कृषि को लेकर स्पष्ट विजन का अभाव दिखता है। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे। इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था को गति नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में कृषि क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से सुधार की पहल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ हुई। किसानों का सशक्तिकरण और उनके आय में वृद्धि करना पहली प्राथमिकता बनी। बीते 11 वर्षों में ऐतिहासिक सुधारों की एक ऐसी नींव रखी गई है जिस पर अमृतकाल में नए भारत की इमारत खड़ी होना प्रारंभ हो गई है। इन्हीं सुधारों में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है।
1 फरवरी 2019 का अंतरिम बजट कृषि क्षेत्र और किसान के सशक्तिकरण के युग में एक नया अध्याय लेकर आया, जब किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और जरूरत के वक्त साहूकारों के चंगुल से बचाने वाली महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करने की क्रांतिकारी घोषणा हुई। केंद्र सरकार की नीति, नियत, निर्णय की त्रिवेणी कैसे काम करती है, इसका उम्दा उदाहरण है ये योजना, जिसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को हुई और पूर्व की तारीख यानी 1 दिसंबर 2018 से ही लागू करते हुए किसानों के बैंक खाते में सीधे 2000 रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित कर दी गई। ये देश की आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना बनी। सभी किसानों के हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत सुधार किए गए और इसी का परिणाम है कि बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब दोगुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले से करीब करीब 900 लाख मीट्रिक टन और बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया। आज दूध उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर वन है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। 11 वर्ष पहले जितना शहद भारत में पैदा होता था आज उसका करीब करीब दो गुना होता है। 6-7 साल पहले करीब 450 करोड़ रुपए का शहद निर्यात होता था, लेकिन हाल ही में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का शहद निर्यात हुआ है। आइए सुनते हैं बीते वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था।
आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आंकड़ा याद रहेगा? भूल जाएंगे? 4 लाख करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है। 35,000 करोड़ पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। हमारी सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी हैं। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रहे हैं। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम, अमृत सरोवर जैसे अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी क्षेत्रों में युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित पोंगल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के युवा नेचुरल फार्मिंग में बेहतरीन काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खेती से जुड़े तमिलनाडु के युवाओं से आग्रह किया कि वे सस्टेनेबल खेती के क्रांति लाने के इस अभियान को और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। श्रोताओं, अपनी आवरण कथा पर चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे।
दोस्तों, संपूर्ण जीवन का आधार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को बनाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ और निधन 11 फरवरी 1968 को हुआ। उनके विचार और कर्तव्य निष्ठा से भारतीय राजनीति में अद्वितीय आदर्श स्थापित हुए। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की समस्याओं के समाधान में भी सक्षम है। उन्होंने अंत्योदय का सपना देखा। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंत्योदय को संतुष्टिकरण का विस्तार दिया। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विजन के साथ बीते 11 वर्षों से न्याय हो रहा है। 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य स्मृति पर पत्रिका के इनसाइड कवर पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन शामिल है। इसके साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस की झलकियां भी इस अंक में शामिल हैं। 77वां गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता, संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ता और राष्ट्र की प्रगतिशील यात्रा का भव्य उत्सव बनकर सामने आया।
कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड ने भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भर भारत की झलक को एक साथ प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के अभिवादन से लेकर तीनों सेना की अनुशासित टुकड़ियां, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और राज्यों की जीवंत झांकियों तक हर दृश्य राष्ट्र गौरव से ओतप्रोत रहा। पत्रिका में शामिल एक फोटो फीचर में गणतंत्र दिवस के वे अविस्मरणीय क्षण संजोए गए हैं जो भारत की एकता, अखंडता और निरंतर प्रगति की कहानी को जीवंत करते हैं।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।